फिलहाल धीरे धीरे सिद्धार्थ को भी हल्दी लगनी शुरू हो चुकी थी। इतना ही नहीं, आकांक्षा को भी लगभग पूरी हल्दी लग चुकी थी और अब उसके हाथों में मेहंदी लगाना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक झलक वहां नहीं पहुंची थी। ये देखकर तो सिद्धार्थ भी हैरानी में डूब गया। वहीं रणविजय तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था वो यहां नहीं आएगी। आखिर किस मुंह से आएगी वो यहां? उसका सच सबके सामने आ चुका है, इसीलिए शायद उसने यहां न आने का फैसला किया है। फिलहाल दाबी, अब हमें शादी की बाकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी उसे अब शायद अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि सिद्धार्थ खुराना अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। यहां आकर वो सिर्फ अपना ही समय बर्बाद करती। ये सोचकर कहीं ना कहीं आकांक्षा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो झलक का वहां ना आना उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा हो। वो अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। सभी लोग एक साथ उस दिशा में देखने लगे। ढोल नगाड़ों के बीच झलक, आदित्य, कबीर, अनामिका शानदार अंदाज में वहां एंट्री कर रहे थे। झलक को देखते ही सिद्धार्थ और आकांक्षा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। झलक ने इतनी शानदार एंट्री ली कि वहां मौजूद हर किसी की नजरें उसी पर जाकर टिक गईं। उसकी खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास, उसके कपड़े और उसका अंदाज सब कुछ बेहद आकर्षक लग रहा था। उसने सफेद रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। गले में डायमंड का शानदार नेकलेस उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसकी गहरी नीरी झील सी आंखों को किसी भी तरह के मेकअप की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर पड़ने वाले प्यारे डिंपल उसे आकांक्षा से पूरी तरह अलग और सबसे खास बना रहे थे। उसकी शांत, कोमल और मोहक नजरें ऐसी लग रही थीं मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। झलक को इस रूप में देखकर सिद्धार्थ का दिल अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। वहीं आकांक्षा के तन बदन में जैसे आग लग गई, क्योंकि उसने साफ देख लिया था कि सिद्धार्थ किस तरह लगातार झलक को ही देखे जा रहा था। झलक बड़े ही प्यार से मुस्कुराई और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। इतना कहकर उसने आकांक्षा की ओर एक खूबसूरत सा गिफ्ट बढ़ा दिया और बोली, ये आपकी तरफ से एक छोटी सी शुभकामना। ये देखते ही मीडिया ने फटाफट झलक को चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई उससे सवाल पूछना चाहता था। किसी को उसके अचानक आने की वजह जाननी थी तो कोई उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन झलक ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सभी को विनम्रता से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। वहीं कबीर की नजर जैसे ही अनामिका पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यार ये लड़की मेरा हाथ भी पकड़ सकती है। अगले ही पल उसने खुद ही अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाई और मन ही मन बोला, आखिर मैं इस लड़की के बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं। एक बार फिर उसकी नजर अनामिका पर चली गई। उसने बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसकी पतली कमर बेहद आकर्षक लग रही थी। कबीर का बार बार मन कर रहा था कि वो जाकर उसकी कमर पर हाथ रख दे, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाया और बस उसे दूर से ही देखता रह गया। उधर झलक धीरे धीरे आदित्य के साथ चलते हुए सिद्धार्थ और आकांक्षा के बिल्कुल करीब पहुंच गई। आकांक्षा अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए झलक को देख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो जल रही थी, क्योंकि कुछ ही पलों में झलक ने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी। थोड़ी देर पहले तक जहां सारे कैमरे और मीडिया आकांक्षा को घेरे हुए थे, अब सभी का ध्यान पूरी तरह झलक पर आ चुका था। कोई उसकी एक तस्वीर लेना चाहता था तो कोई उसका इंटरव्यू करना चाहता था। फिलहाल झलक सीधे उर्वशी खुराना के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पोते की शादी होने जा रही है। आई होप आपको बहुत खुशी हो रही होगी। उर्वशी ने झलक की आंखों में गहराई से देखा। वो कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या सचमुच जैसा रणविजय, सिद्धार्थ और बाकी सभी कह रहे हैं, झलक सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रही है या फिर उसके दिमाग में कोई और बड़ी चाल चल रही है। लेकिन झलक की आंखों में उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। वहां सिर्फ एक अजीब सी शांति और हल्की सी निराशा दिखाई दी। यही देखकर उर्वशी पूरी तरह मायूस हो गई। उर्वशी मन ही मन सोचने लगी, मुझे इस लड़की से इतना अजीब सा डर क्यों लग रहा है? क्यों बार बार ऐसा एहसास हो रहा है कि ना जाने किस पल ये कोई नया बम हमारे ऊपर फोड़ देगी? इस लड़की से बहुत खतरनाक वाइब्स आ रही हैं। आखिरकार हमने अपने बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं। लोगों को पहचानना हमें अच्छी तरह आता है। भले ही हमारे बच्चे लोगों को पहचानने में गलती कर दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिलहाल तभी रणविजय ने देखा कि झलक और अनामिका बड़े आराम से वहां बैठी हुई थी। उसे लगा कि शायद झलक जानबूझकर अपनी फीलिंग्स या अपना जुनून किसी को नहीं दिखा रही है, लेकिन उसे तड़पानी में अलग ही मजा आएगा। यही सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस झलक, अगर आप यहां आई ही हैं तो जाइए ना, होने वाले दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए, जाकर उन्हें हल्दी लगाइए। रणविजय को पूरा यकीन था कि झलक अंदर ही अंदर चल रही होगी और अपने पहले पति को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर टूट चुकी होगी। उसे लगा कि अगर झलक अपने ही पूर्व पति को हल्दी लगाएगी तो उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो फिर बोला, मिस झलक जाइए ना, जाकर दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाइए। ये सुनकर झलक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। थैंक यू मिस्टर खुराना, वाकई आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल वाले हैं। मैं तो पहले ही जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप लोग मुझे परमिशन दें या ना दें, इसीलिए मैं खुद से आगे नहीं बढ़ी। अब आपने कह दिया है तो जरूर जाऊंगी। रणविजय मन ही मन बोला, शायद मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ये इतनी शांति से बातें कर रही है। इतना कहकर झलक ने अनामिका की तरफ हल्का सा इशारा किया। वहीं रणविजय, सिद्धार्थ, नैना ओब्रॉय, ईशान ओब्रॉय और वहां मौजूद बाकी सभी लोग इस बात को जानने के लिए बेताब थे कि आखिर झलक अब कौन सी नई चाल चलेगी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जिससे सबके सामने उसका अमीर होने का नकाब पूरी तरह उतर जाएगा, इसीलिए सभी लोग बस उसकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे थे। उधर आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और झलक के साथ सीधा सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। सिद्धार्थ अभी भी अपनी जगह बैठा लाल आंखों से लगातार झलक को ही देख रहा था। वो उसके चेहरे पर अपने लिए बेबसी, जुनून या प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झलक की आंखों में उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए परायापन ही दिखाई दिया। ये देखकर वो अंदर से और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने झलक के साथ अपनी जिंदगी के न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे। वो तो उसकी आंखें देखकर ही समझ जाया करता था कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन आज झलक की आंखों में अपने लिए किसी भी तरह की कोई भावना ना देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिलहाल झलक ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने बिना कुछ कहे हल्दी का कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। झलक ने उसमें से बड़े प्यार से थोड़ी सी हल्दी उठाई और काफी दूरी बनाकर बिना सिद्धार्थ का छुए हल्दी उसके ऊपर हल्के से डाल दी। उसने जानबूझकर उसे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया। ये देखकर आदित्य के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। अगले ही पल आदित्य ने भी थोड़ी सी हल्दी ली और सिद्धार्थ को लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेशंस। धीरे धीरे कबीर, अनामिका ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद झलक सीधे आकांक्षा के पास गई। उसने बड़े प्यार से उसके गाल पर हल्दी लगाई और मुस्कुराकर बोली, बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सॉरी, अभी तो मैं हल्दी और मेहंदी के लिए कोई बड़ा गिफ्ट लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन कल शादी में जरूर लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसने पूरी तरह औपचारिकता निभाते हुए हल्दी लगाई और फिर सीधा खाने की टेबल की तरफ चली गई। उसने अनामिका को इशारा किया। कुछ ही देर में वहां मौजूद वेटरों ने तरह तरह के व्यंजनों से पूरी टेबल भर दी। फिर झलक, आदित्य, कबीर, अनामिका बड़े आराम से बैठकर खाना खाने लगे।
वहीं दूसरी तरफ सभी कैमरों की नजरें लगातार उन्हीं पर टिकी हुई थीं। हर किसी को लग रहा था कि अब झलक कुछ करेगी, अब कोई तमाशा होगा, लेकिन झलक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बड़े आराम से हल्दी का फंक्शन अटेंड किया, प्यार से खाना खाया और आखिर में एक जोरदार सी डकार लेकर मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखा। यार, खाना तो आज बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है।